दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में एक मौका ऐसा आता है जहां हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या सही है और कौन सी राह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं, तो ग्रामवाणी आपके लिए लेकर आया है हमारे आपके आसपास के लोगों की सच्ची बात और उनके मार्गदर्शन, जिसे सुनकर शायद आपके भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो आइए सुनते हैं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं शिवपुरी मोबाइल वाणी और मैं हूं अशोक शर्मा। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं तन्मय वशिष्ठ जी, आईएएस की उन्होंने परीक्षा हाल ही में उत्तीर्ण की है, और सर स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद।
तन्मय सर, आपने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आज आपका नाम चर्चा में है, और कल ही आपका ब्राह्मण समाज और पूरे शिवपुरी शहर ने आपका सम्मान और स्वागत किया है। आपने 10वां स्थान जो पाया है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं?
जी, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे बड़े भाई श्री राहुल आलोक शर्मा, जिनके साथ रहकर मैंने तैयारी की, और मेरे गुरुओं को, शिक्षकों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया अभी, और ईश्वर को, सभी को श्रेय देना चाहता हूँ।
तन्मय सर, जिस तरीके से मैं और भी जो हमारे साथी युवा हैं, छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस तरीके की, मैं उनके विषय में आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कैसे और कहाँ से शुरुआत की?
सर, वैसे तो ओरिजिनली जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन, वो शिवपुरी है, पर मेरे पिताजी की जो जॉब थी वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में रही है, तो मैंने अपना प्रारंभिक एजुकेशन 12वीं क्लास तक दमोह जिले में किया है। मैंने एमपी बोर्ड से 8वीं क्लास तक मैंने एमपी बोर्ड में ही पढ़ाई की है, और 9वीं 10वीं में मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE में मैंने दाखिला लिया था, और 11वीं 12वीं में मैं वापस से एमपी बोर्ड में ही अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया। इस पीरियड में मैंने IIT JEE की तैयारी भी की थी, तो यही मेरा प्रारंभिक एजुकेशन रहा है।
तो आपने ये जो आपका ये सपना था IAS की तैयारी करना, IAS बनना, ऑफिसर बनना,
सर जैसे कि किसी भी छोटे जिले में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको दिखता है कि प्रशासन में अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो चीजों में परिवर्तन ज्यादा प्रखर रूप से दिखाई देता है। तो मुझे बचपन से पता तो था कि एक इम्पैक्ट जो IAS ऑफिसर ला सकता है वो एक बहुत ही व्यापक रूप से पब्लिक सर्विस में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसके बारे में मुझे रुचि तो थी, पर मेरा पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मैं IIT मुंबई से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना BTech किया है, तो उस दौरान मुझे देश के बाहर भी जाने का कई बार अवसर मिला, तो मैं फ्रांस और अन्य राष्ट्रों में जब गया तो मैंने देखा कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में जो एक डिफरेंस था वो एक व्यापक डिफरेंस था, तो उस समय से ही मेरे मन में था कि अब देश के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैं खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए एक बैंक में भी काम किया, गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो मैंने वहां काम किया, और फिर 2017 में मैंने डिसाइड किया कि अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो अब यही समय है, तो उस समय मैंने अपना त्याग पत्र देकर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। तो 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरी 215 रैंक आई और मेरा भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था 2018 में, जिसमें कि मुझे 10th रैंक हासिल हुई ऑल इंडिया, और होपफुली मेरा IAS में चयन हो जाएगा।
तन्मय जी, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा कि आपने इतनी बड़ी सफलता के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया?
सर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में कई सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ लोगों के लिए तो पारिवारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, पर मेरे लिए परिवार की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट था इस परीक्षा में, तो ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। कठिनाइयों का जहां तक सवाल है, UPSC की जो परीक्षा होती है उसमें 10 लाख के करीब विद्यार्थी हर साल अपियर होते हैं, और फाइनली जो IAS में चयन होता है वो करीबन 180 लोगों का होता है, तो कॉम्पिटिशन का जो स्केल है UPSC के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा है, तो ये एक अपने आप में ही चैलेंज होता है। दूसरी चीज रहती है कि आपको तैयारी करने के लिए गाइडेंस चाहिए होता है, तो गाइडेंस या तो आप कोचिंग ज्वाइन करें, पर हर व्यक्ति कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और मेरा अपना ये मानना था कि मैं बिना कोचिंग कर ही इस परीक्षा को क्लियर करूंगा, तो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू जब पूरी प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज होते हैं एग्जाम के, जो कि लगभग 1 साल के लिए समय लेते हैं पूरा फाइनल रिजल्ट आने में, तो इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आप इसमें सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आपको असफलता मिलने वाली है, पर उन निराशाओं को सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू, आप अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू लगे रहें, डटे रहें, और मेरी योगा और मेडिटेशन की मेरी हॉबी रही है, तो उससे भी मुझे एक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन बना रहता था। तो इसी तरीके से मैंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया है।
जी, मेरा सवाल था सर, ये बहुत ही आपने सरल शब्दों में सारी बातें आपने बता दी हैं, और बाकी सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे तैयारी करते हैं, और वो फिर भी वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि IAS की तैयारी के लिए आपने अपना कितना समय पर डे मतलब दिया होगा लगभग?
देखिए, 18-18 घंटे तो किसी व्यक्ति के लिए लगातार पढ़ते रहना, ये तो मैं समझता हूँ असंभव है। तो इस तरीके से तो किसी भी चीज के लिए तैयारी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप 1-1.5 हफ्ते में ही बीमार हो जाएंगे और फिर आपका बाकी समय ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये कोई सही अप्रोच नहीं है। मेरा ये रहता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे चीजें सारी नई नई थी तो उस समय ज्यादा मेहनत करनी होती थी, तो 10-11 घंटे के करीब मैं निकालने की रोजाना कोशिश करता था। और मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करता था कि लगातार मैं रोजाना इस तरीके का एफर्ट देता रहूं, ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे और सिलेबस का हर हिस्से को कवर किया जा सके। तो इस तरीके से 18-18 घंटे इस तरीके की मेहनत करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये जो मिथ्स फैलाए गए हैं कि लोगों को हवा बन जाता है सिविल सर्विसेज की परीक्षा का, कि तैयारी करने की उनमें हिम्मत ही नहीं आ पाती, तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। एक सामान्य विद्यार्थी भी अगर लगातार परिश्रम करता रहे और अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करता रहे, देखिए हर पेपर का एक डिमांड होता है कि हर परीक्षा का जो आप सबसे पहले अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, तो उसके जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री एक टॉपिक है, तो हिस्ट्री में भी अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक फैक्चुअल सवाल पूछा जा सकता है कि फलानी घटना किस ईयर में हुई, तो कुछ परीक्षाएं इन पर फोकस करती हैं, पर UPSC की जो परीक्षा है वो आपको अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ कितनी है घटनाओं की, उन पर फोकस करती है। तो किस एग्जाम का क्या नेचर है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सबसे पहले उसके प्रश्न पत्र देखिए, उसके सिलेबस को देखिए और क्या क्या उसके लिए मटेरियल होगा, बुक्स होंगी, उनको खरीदिए और फिर उससे आप तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।